कोज़ात 11वां बाब। और जेलादी इफ्ता बड़ा जबरदस्त सूरमा और कस्बी का बेटा था, और जेलाद से इफ्ता पैदा हुआ था, और जेलाद की बीवी के भी उससे बेटे हुए, और जब उसकी बीवी के बेटे बड़े हुए तो उन्होंने इफ्ता को ये कहकर निकाल दिया कि हमारे बाप के घर में तुझे कोई मेरास नहीं मिलेगी, क्योंकि तू गैर औरत का बेटा है। तब इफ्ता अपने भाइयों के पास से भागकर तौब के मुल्क में रहने लगा, और इफ्ता के पास शोहदे जमा हो गए और उसके साथ फिरने लगे। और कुछ अरसा के बाद बनी अमून ने भी बनी इसराइल से जंग छेड़ दी, और जब बनी अमून बनी इसराइल से लड़ने लगे तो जेलादी बुजुर्ग चले के इफ्ता को तौब के मुल्क से ले आए। सो वो इफ्ता से कहने लगे कि तू चलकर हमारा सरदार हो ताकि हम बनी अमून से लड़ें। और इफ्ता ने जेलादी बुजुर्गों से कहा, क्या तुमने मुझसे अदावत करके मुझे मेरे बाप के घर से निकाल नहीं दिया? सो अब जो तुम मुसीबत में पड़ गए हो तो मेरे पास क्यों आए? जेलादी बुजुर्गों ने इफ्ता से कहा कि अब हमने फिर इसलिए तेरी तरफ रुख किया कि तू हमारे साथ चलकर बनी अमून से जंग करे, और तू ही जेलाद के सब बाशिंदों पर हमारा हाकिम होगा। और इफ्ता ने जेलादी बुजुर्गों से कहा, अगर तुम मुझे बनी अमून से लड़ने को मेरे घर ले चलो और खुदावंद उनको मेरे हवाला कर दे तो क्या मैं तुम्हारा हाकिम होऊंगा? जेलादी बुजुर्गों ने इफ्ता को जवाब दिया कि खुदावंद हमारे दरमियान गवाह हो, यकीनन जैसा तूने कहा हम वैसा ही करेंगे। तब इफ्ता जेलादी बुजुर्गों के साथ रवाना हुआ, और लोगों ने उसे अपना हाकिम और सरदार बनाया, और इफ्ता ने मिस्फा में खुदावंद के आगे अपनी सब बातें कह सुनाई। और इफ्ता ने बनी अमून के बादशाह के पास एलची रवाना किए और कहला भेजा कि तुझे मुझसे क्या काम जो तू मेरे मुल्क में लड़ने को मेरी तरफ आया है? बनी अमून के बादशाह ने इफ्ता के एलचियों को जवाब दिया, इसलिए कि जब इसराइल मिस्र से निकलकर आए तो एरनून से यबूक और यर्दन तक जो मेरा मुल्क था उसे उन्होंने छीन लिया, सो अब तू उन इलाकों को सुला सलामती से मुझे फेर दे। तब इफ्ता ने फिर एलचियों को बनी अमून के बादशाह के पास रवाना किया और ये कहला भेजा कि इफ्ता यूं कहता है कि इसराइलियों ने ना तो मुआब का मुल्क और ना ही अमून का मुल्क छीना, बल्कि इसराइली जब मिस्र से निकले और बियाबान छानते हुए बहरे कुलजम तक आए और कादिस में पहुंचे तो इसराइलियों ने अदोम के बादशाह के पास एलची रवाना किए और कहला भेजा कि हमको जरा अपने मुल्क से होकर गुजर जाने दे, लेकिन अदोम का बादशाह ना माना। इसी तरह उन्होंने मुआब के बादशाह को कहला भेजा और वो भी राजी ना हुआ, चुनाचे इसराइली कादिस में रहे। तब वो बियाबान में होकर चले और अदोम के मुल्क और मुआब के मुल्क के बाहर बाहर चक्कर काट कर मुआब के मुल्क के मशरक की तरफ आए और अरनोन के उस पार डेरे डाले, पर मुआब की सरहद में दाखिल ना हुए, इसलिए कि मुआब की सरहद अरनोन था। फिर इसराइलियों ने अमोरियों के बादशाह सयोन के पास जो हिस्बून का बादशाह था एलची रवाना किए और इसराइलियों ने उसे कहला भेजा कि हमको जरा इजाजत दे दे कि तेरे मुल्क में से होकर अपनी जगह को चले जाएं। पर सिय्योन ने इसराइलियों का इतना एतबार ना किया कि उनको अपनी सरहद से गुजरने दे, बल्कि सिय्योन अपने सब लोगों को जमा करके यही इसमें खैमाजन हुआ और इसराइलियों से लड़ा, और खुदावंद इसराइल के खुदा ने सिय्योन और उसके सारे लश्कर को इसराइलियों के हाथ में कर दिया और उन्होंने उनको मार लिया। सो इसराइलियों ने अमूरियों के जो वहां के बाशिंदे थे सारे मुल्क पर कब्जा कर लिया, और वो अर्नोन और यबोक तक और बियाबान से यर्दन तक अमूरियों की सब सरहदों पर काबिज हो गए। पस खुदावंद इसराइल के खुदा ने अमूरियों को उनके मुल्क से अपनी कौम इसराइल के सामने से खारिज किया। सो क्या तू अब उस पर कब्जा करने पाएगा? क्या जो कुछ तेरा देवता कमूस तुझे कब्जा करने को दे, तू उस पर कब्जा ना करेगा? पस जिस जिस को खुदावंद हमारे खुदा ने हमारे सामने से खारिज कर दिया है, हम भी उनके मुल्क पर कब्जा करेंगे। और क्या तू सफोर के बेटे बल्क से, जो मुआब का बादशाह था, कुछ बेहतर है? क्या उसने इसराइलियों से कभी झगड़ा किया या कभी उनसे लड़ा? जब इसराइली हसबोन और उसके कस्बों और एरोएर और उसके कस्बों और उन सब शहरों में जो एर्नोन के किनारे किनारे हैं 300 बरस से बसे हैं, तो इस अरसा में तुमने उनको क्यों ना छुड़ा लिया? गर्ज मैंने तेरी खता नहीं की, बल्कि तेरा मुझसे लड़ना तेरी तरफ से मुझ पर जुल्म है। पस खुदावंद ही जो मुनसिफ है बनी इसराइल और अमोन के दरमियान आज इंसाफ करे। लेकिन बनी अमोन के बादशाह ने इफ्ता की ये बातें जो उसने उसे कहला भेजी थी ना मानी। तब खुदावंद की रूह इफ्ता पर नाजल हुई, और वो जिलाद और मनस्सी से गुजरकर जिलाद के मिस्फा में आया, और जिलाद के मिस्फा से बनी अमून की तरफ चला। और इफ्ता ने खुदावंद की मन्नत मानी और कहा कि अगर तू यकीनन बनी अमून को मेरे हाथ में कर दे, तो जब मैं बनी अमून की तरफ से सलामत लौटूंगा, उस वक्त जो कोई पहले मेरे घर के दरवाजा से निकलकर मेरे इस्तकबाल को आए, वो खुदावंद का होगा, और मैं उसको सोख्तनी कुर्बानी के तौर पर गुजरानूंगा। तब इफ्ता बनी अमून की तरफ उनसे लड़ने को गया, और खुदावंद ने उनको उसके हाथ में कर दिया, और उसने अरोएर से मनीत तक, जो 20 शहर हैं, और एबल करमेम तक बड़ी खूनरेजी के साथ उनको मारा। इस तरह बनी अमून बनी इसराइल से मगलूब हुए। और इफ्ता मिस्फा को अपने घर आया, और उसकी बेटी तबले बजाती और नाचती हुई उसके इस्तकबाल को निकलकर आई, और वही एक उसकी औलाद थी, उसके सिवा उसके कोई बेटी बेटा ना था। जब उसने उसको देखा तो अपने कपड़े फाड़ कर कहा, हाय मेरी बेटी, तूने मुझे पस्त कर दिया, और जो मुझे दुख देते हैं उनमें से एक तू है, क्योंकि मैंने खुदावंद को जुबान दी है और मैं पलट नहीं सकता। उसने उससे कहा, ऐ मेरे बाप, तूने खुदावंद को जुबान दी है, सो जो कुछ तेरे मुंह से निकला है वो ही मेरे साथ कर, इसलिए कि खुदावंद ने तेरे दुश्मनों बनी अमून से तेरा इंतकाम लिया। फिर उसने अपने बाप से कहा, मेरे लिए इतना कर दिया जाए कि 2 महीनों की मोहलत मुझको मिल जाए, ताकि मैं जाकर पहाड़ों पर अपनी हमजोलियों के साथ अपने कमवारपन पर मातम करती फिरूं। उसने कहा, जा और उसने उसे 2 महीने की रुखसत दी, और वो अपनी हमजोलियों को लेकर गई और पहाड़ों पर अपने कमवारपन पर मातम करती फिरी। और 2 महीने के बाद वो अपने बाप के पास लौट आई, और वो उसके साथ वैसा ही पेश आया जैसी मन्नत उसने मानी थी। इस लड़की ने मर्द का मुंह ना देखा था। सो बनी इसराइल में ये दस्तूर चला कि साल ब साल इसराइली औरतें जाकर वर्ष में 4 दिन तक इफ्ता जिलादी की बेटी की यादगारी करती थीं।